ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज श्री शिव गीता स्पिरिचुअल डिस्कोर्स प्रेजेंटेड बाय श्री रजनीकांत चांदवडकर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
शिव गीता अध्याय 9। और दूसरा कुछ भी न जाना, केवल अज्ञान ही अज्ञान का ही अनुभव किया, परंतु यह अज्ञान भी साक्षी आदि की वृत्ति से अनुभव किया जाता है कि सुख से सोया। यदि साक्षी न हो तो सुख से सोने की स्मृति किसी प्रकार नहीं हो सकती, क्योंकि गाढ़ निद्रा में सोते समय तो उसे सुख का अनुभव होता नहीं, उसके पश्चात जागृत होकर साक्षी के द्वारा जानता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन अवस्था जैसी इस लोक की है तैसी देवलोक की भी है। सुषुप्ति के अंत में जब जागृत अवस्था आती है तो अपने कारण रूप जीव के प्रारब्ध के कर्म से फिर इंद्रिय इस प्रकार जाग उठती है जिस प्रकार अग्नि से विस्फुलिंग यानी चिंगारिया उठने लगती है, इसी प्रकार सूक्ष्म रूप में लीन हुई इंद्रियों में उठती है। जिस प्रकार जल भरा हुआ घड़ा जल में डुबा दो और यदि उसे फिर निकालो तो वह उस जल से भरा ही आता है, इसी प्रकार से यह जीवात्मा इंद्रिय आदि सहित कारण में लय को प्राप्त हो उन इंद्रियों सहित ही जागृत अवस्था को प्राप्त होता है। विज्ञानात्मा यानी जीव, कारणात्मा यानी ईश्वर, यह दोनों वास्तव में एक ही रूप है, परंतु अविद्या के प्रपंच से उनमें भेद प्रतीत होता है। जब यह अविद्या नष्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता, उस समय दोनों एक रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक ही सूर्य जलादि पदार्थों से प्रतिबिंबित होने से अनेक रूप दिखता है और जल के चलायमान होने से सूर्यादि में ही चंचलता प्रतीत होती है, इसी प्रकार कूटस्थ एक जीवात्मा ईश्वर एक ही है और अनेक देहों में प्रतिबिंबित जीव रूप से प्रविष्ट होकर अनेक रूप और गमनागमनादि रूप से दिखता है। आत्मा देहादि उपाधि से रहित स्वप्रकाश है, परंतु स्वरूप की स्मृति लोप करने वाली माया ने विस्मृति को प्राप्त कर दिया है। इससे सब प्रपंच इसमें अज्ञान से विदित होता है, कारण कि यह माया तो अघटित घटना पटीयसी यानी न होने वाली बात को भी करके दिखा देती है। माया के योग से आत्मा में कितने ही विरुद्ध कर्म दिखे, परंतु माया के दूर होते ही जीव ईश्वर और निर्विकार हो जाता है। हे दशरथ कुमार, यह तुमसे जीव का स्वरूप मैंने वर्णन किया। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे जीवस्वरूप कथनम नाम दशमोऽध्यायः। शिव गीता अध्याय 11। जीव की देहांतर गति और परलोक गति लिंग देह के कारण होती है, यह बात संक्षेप से कहकर अब विस्तार से वर्णन करते हुए श्री भगवान बोले, हे नृप श्रेष्ठ, उस जीव की देहांतर गति और परलोक गति मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता है और पिया जाता है उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है, उसी से जीवन धारण होता है। जिस समय व्याधि व जरा अवस्था से कफ प्रबल होता है तब जठरानल के मंद होने से भोजन किया हुआ अन्न अच्छी तरह नहीं पचता है। जब भोजन किए हुए रस के न प्राप्त होने से शीघ्र ही धातु सूख जाते हैं और भोजन किए तथा पान किए रस से ही शरीर में जठराग्नि के दीप्त रहते जो अन्न भक्षण किया जाता है वह रस रूप होकर शरीर को पुष्ट करता है। उस समय प्राण वायु वह संपूर्ण रस लेकर सब धातुओं में पहुंचाता है, इसी कारण से यह समान वायु कहलाता है और वृद्धावस्था में वह रस उत्पन्न नहीं होता, इस कारण शरीर के बंधन जो दृढ़ता से परस्पर संघटित है शिथिल हो जाते हैं। जिस प्रकार की आम्र फल पककर अपने भार से आप ही शीघ्र पतित हो जाता है, इसी प्रकार शरीर के शिथिल होने से लिंग शरीर का स्थूल से वियोग हो जाता है। संपूर्ण इंद्रियों की वासना आध्यात्मिक जीव संबंधी बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियादि आदि भौतिक प्राप्त होने वाले देह के कारणभूत सूक्ष्म रूप वाले कर्म, यह तीनों आकर्षित होकर हृदय कमल में एकता को प्राप्त होते हैं। तब मुख्य प्राण वायु शेष नौ वायुओं से संयुक्त होकर ऊर्ध्व श्वास रूपी हो जाता है और फिर वे सब एक होकर जीवात्मा से संयुक्त होते हैं। विद्या कर्म और वासना से युक्त हो यह जीव अपने कर्म से नाड़ी मार्ग का आश्रय करके नेत्र मार्ग अथवा ब्रह्मरंध्र के द्वारा बहिर्गत होता है। जिस प्रकार से घड़े को इस देश से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, परंतु वह आकाश से पूर्ण हो जाता है, जहाँ घट जाएगा उसी स्थान में घटाकाश भी जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ लिंग शरीर गमन करता है उसी स्थान में जीव होता है और कर्मानुसार दूसरे देह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार नदी का मच्छ कभी इस किनारे और कभी दूसरे किनारे जाता है, इसी प्रकार से यह मोक्ष न होने तक अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। जो पाप है उनको यमदूत ले जाते हैं, जो पापी हैं उनको यमदूत ले जाते हैं। यह यातना देह का जो नरक दुख भोगने के लिए दी जाती है उसको आश्रय करके केवल नरको ही को भोगता है। और जिन्होंने सदा इष्ट यानी यज्ञादि पूत यानी वापी कूप तड़ाग आदि निर्माण करना कर्म किए है, वह पितृलोक को गमन करते हैं। यमदूत उन्हें पितृलोक को प्राप्त करते हैं। उस मार्ग का क्रम यह है कि धूम, फिर रात्रि अभिमानी देवता के निकट, फिर कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के निकट, फिर दक्षिणायन अभिमानी देवता के निकट, फिर वहां से पितृलोक में जाता है। पितृलोक से आगे चंद्रलोक को प्राप्त हो दिव्य देह पाकर महालक्ष्मी का भोग करता है। वहां यह चंद्रमा की ही समान होकर कर्म की फल की अवधि तक चंद्रलोक में वास करता है। जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है तो जिस क्रम से इस लोक में गमन हुआ था उसी क्रम से इस लोक में फिर आता है। चंद्रलोक से चलते समय उस शरीर को छोड़ यह आकाश रूप होकर आकाश से वायु में और वायु से जल में आता है। जल से मेघों में प्राप्त होकर फिर यह वर्षा द्वारा पृथ्वी पर पतित होता है। फिर अनेक कर्म के वश होकर भक्षण योग्य अन्न में प्राप्त होता है। और कितने एक शरीर प्राप्ति के निमित्त मनुष्यादि योनि में प्राप्त होते हैं और कितने एक कर्म और ज्ञान के तारतम्य से स्थावरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जो जीव अन्न में प्राप्त हुए हैं उस अन्न को स्त्री पुरुष भक्षण करते हैं, उससे स्त्री और पुरुषों का रज और शुक्र होकर उन दोनों के संयोग से वह गर्भ रूप धारण करते हैं। यही जीव कर्म के अनुसार स्त्री पुरुष और नपुंसक होता है। इस प्रकार से इस जीव की इस लोक में गति और परलोक गति होती है। अब इसकी मुक्ति का वर्णन करता हूं। जो शमदमादि साधन संपन्न सदा अपने वर्णाश्रम के कर्म करते और फल की आकांक्षा न करके ईश्वरार्पण कर देते हैं, वह मनुष्य देवयान मार्ग से ब्रह्म लोक पर्यंत गमन करते हैं। वह प्रथम ज्योति में प्राप्त हो पीछे दिन और फिर शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के निकट जाते हैं, फिर उत्तरायण को प्राप्त होकर संवत्सर के निकट गमन करते हैं, फिर सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक से भी ऊपर विद्युत लोक को प्राप्त होते हैं। फिर उससे आगे कोई एक पुरुष दिव्य देह को प्राप्त हो ब्रह्म लोक को जाते हैं और वहां से यहाँ नहीं आते हैं। ब्रह्म लोक में प्राप्त होकर दिव्य देह के आश्रित हो यह जीव रहता है। उस दिव्य देह से ब्रह्म लोक में अनेक प्रकार के मन इच्छित भोगों को भोगता हुआ बहुत काल तक उस स्थान में वास कर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। उसकी फिर आवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार से स्वप्न में देखी हुई सृष्टि जागृत होते ही लय हो जाती है, इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से यह सब सृष्टि लय हो जाती है और जिन्होंने केवल पाप ही किए हैं और उपासना तथा पुण्य कर्म से रहित उनकी तीसरी गति अर्थात नरक होता है। वे अनेक प्रकार के रौरव महारौरव घोर नरकों को भोग कर पीछे शेष कर्मों के अनुसार क्षुद्र जंतुओं के शरीर को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में लीख मच्छर डांश आदि का जन्म लेता है। इस प्रकार से जीव की गति तुमसे वर्णन की, अब और क्या सुनने की इच्छा है? श्री राम उवाच। रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने उपासना और कर्मफल से अनेक प्रकार के चंद्रलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति वर्णन की, सो यथार्थ है। गंधर्वादी लोक और इंद्रादी लोकों में किस प्रकार से भोग प्राप्त होते हैं? कोई देवता, कोई इंद्र और कोई गंधर्व होता है। हे शंकर, यह कर्म का फल है वा उपासना का फल है? सो कृपा करके वर्णन कीजिए, इसमें मुझे बड़ा संदेह है। श्री भगवान उवाच। शिवजी बोले, उपासना और शुभ कर्म इन दोनों ही के योग से फल प्राप्त होता है, वह हम वर्णन करते हैं। जो मनुष्य युवा सुंदर शूर निरोग और बलवान हो, वह यदि सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी को निष्कंटक भोग करता हो, उसका नाम मानुषानंद है। यह आनंद साधारण मनुष्यों को देह प्राप्त होने वाले आनंद से 100 गुना अधिक है। जो मनुष्य तप आदि से संयुक्त हो, वह गंधर्व होता है। मनुष्यों के आनंद से 100 गुना आनंद गंधर्व को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ऊपर ऊपर पितृलोक देवादि लोक में उत्तरोत्तर 100 गुना आनंद बढ़ता जाता है। उनमें भी देवता, देवता से इंद्र, इंद्र से बृहस्पति, बृहस्पति से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से ब्रह्मानंद उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक है। ज्ञान के आनंद से अधिक आनंद तो देवलोक में भी नहीं है, कारण कि ज्ञानी को किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कहीं से भय नहीं है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वेद वेदांग के पारगामी निष्पाप और निष्काम है और भगवत की उपासना करने वाले है, वह अनुक्रम से उत्तर उत्तर आनंद को प्राप्त होते हैं। परंतु हे दशरथ कुमार, यह जो कुछ आनंद है सो आत्मज्ञान की बराबर नहीं है। इससे आत्मज्ञान का अनुष्ठान करना उचित है, इसीलिए आत्मज्ञान का अनुष्ठान करना उचित है। जो ब्राह्मण ब्रह्म देवता है, उसे कर्म उपासना से कुछ प्रयोजन नहीं है, न उसकी कर्म में कुछ वृद्धि और न करने से कुछ हानि भी नहीं। जो शास्त्र ने विहित कर्मों का विधान और निषिद्ध कर्मों का निषेध किया है, वह केवल जब तक ज्ञान नहीं तब तक है। ज्ञान होने पर कुछ नहीं, और यदि ज्ञानी लोक स्थापन के निमित्त करे तो भी कुछ हानि नहीं। इस कारण से ज्ञानवान ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। जो कोई पुण्यवान ज्ञानी जानकर कर्म करता है, उसके पुण्य का फल अक्षय होता है। जिस फल को मनुष्य करोड़ ब्राह्मण के भोजन कराने से प्राप्त होता है, वह फल एक ज्ञानी के भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। जो वस्तु ज्ञानी जनों को दिए जाती है वह करोड़ गुना मिलती है, और जो मनुष्यों में अधम ज्ञानी की निंदा करता है, वह क्षय रोग को प्राप्त होकर मृतक हो जाता है, कारण कि ज्ञानी साक्षात ईश्वर है। हे रामचंद्र, जो निर्गुण को कठिन समझते हैं, वह पहले सगुण उपासना करे। किसी भी सगुण उपासना करने वाले की अधोगति नहीं होती, इस कारण सगुण रूप की ही उपासना करके सुखी हो। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे जीवगत्यादि निरूपणम् नामैकादशो अध्यायः। शिवगीता अध्याय 12। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव देव महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप उपासना की विधि और उसका देश काल वर्णन कीजिए कि किस समय किस प्रकार उपासना की जाए। हे भगवान, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो तो उपासना का अंग और नियम कहो। फिर शिवजी बोले, हे श्री राम, मैं तुमसे उपासना की विधि और उसका देश काल कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। जितने देवता है यह सब मेरे ही रूप है, वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं। जो दूसरे देवताओं के भक्त है और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते हैं, हे राजन, वे पुरुष मेरा ही भेद बुद्धि से यजन करने वाले हैं, जिस कारण कि इस संपूर्ण संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। इसी से मैं सब क्रिया का भोक्ता और सबका फल देने वाला हूँ। जो पुरुष विष्णु शिव गणेश आदि जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, उसी भावना के अनुसार उसी देवता के रूप से मैं उन्हें वांछित फल देता हूँ। विधि से अविधि से किसी प्रकार से हो, जो मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं प्रसन्न होकर फल देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि वह दुराचारी है, परंतु वह अनन्य होकर मेरा भजन करता है, उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए और पुण्यवान है, यह भक्ति की महिमा दिखाई है। परंतु यह निश्चय जानना चाहिए कि अनन्य भक्ति वाला किसी प्रकार दुराचारी नहीं हो सकता, कारण कि अनन्य भक्ति का और स्थान में मन नहीं, कारण कि अनन्य भक्ति का और स्थान में मन नहीं जाता। जो एक निष्ठ बुद्धि होकर जीवात्मा परमात्मा को एक ही रूप जानता है, अर्थात जीव रूप भी मेरे को ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसको पाप स्पर्श नहीं करता, बहुत क्या उसे ब्रह्म हत्या भी स्पर्श नहीं करती। उपासना की विधि चार प्रकार की है, संपत, आरोप, संवर्ग और अध्यास। अल्प वस्तु का भी गुण योग से मन की वृत्ति से अनंत गुणों की भावना से चिंतन करना, जैसे कि मूर्ति में अनंत गुण विशिष्ट शिव तथा विष्णु का ध्यान करना, इसका नाम संपत है। एक देश व अंग में संपूर्ण उपास्य वस्तु का आरोप करके जो उपासना करना है उसे आरोप कहते हैं। जैसे ओंकार की उद्गीत साम रूप से उपासना की जाती है। आरोप और अध्यास इनका स्वरूप बहुधा एक सा है, भेद इतना ही है कि बुद्धिपूर्वक किसी एक वस्तु में विवक्षित धर्म का आरोप करके उसकी उपासना करना, जैसे स्त्री पर अग्नि का आरोप, अर्थात स्त्री को अग्नि रूप मानना, यह अभ्यास है। कर्म योग से उपासना करने का नाम संवर्ग है, अर्थात संपूर्ण भूतों को उपासना के योग से वश में करना, जैसे प्रलय काल में संवर्त नामक वायु अपनी शक्ति से सब भूतों को वश करती है। गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान से देवता में और अपने में भेद न मानना और अंतकरण से देवता के समीप प्राप्त होना और अंतकरण से ही सब पूजन कल्पित करना, इसका नाम अंतरंग उपासना है। और इसके उपरांत दूसरी विधि से बहिरंग उपासना कहते हैं। तब इस प्रकार किसी की उपासना करनी और कहाँ तक करनी, किसी भी देवता की उपासना करते हुए ध्यान से उस देवता के स्वरूप का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को विजातीय ज्ञान से शिव का ध्यान करते हुए कामिनी के ध्यान से मध्य में विच्छिन्न न होकर व्यवधान रहित ज्ञान परंपरा से निधिध्यासना करके ध्यान योग्य देवताओं में अपनी बुद्धि लगाकर एक रूपता साक्षात होने तक उपासना करते रहना चाहिए। संपदादि जो चार उपासना वर्णन की है, यह दृढ़ बुद्धि की उपासना तथा उपासना की परमावधि है। और सगुण उपासना इस प्रकार है कि मूर्ति की उपासना करने के समय उसके प्रत्येक अंगों में अक्षय दृष्टि लगाकर उपासना करनी चाहिए। इस उपासना के अंगों को श्रवण करो। उपासनाओं के योग्य देशों का कथन करते हैं कि तीर्थ और क्षेत्रादि में की जाने से उपासना होगी, यह विचार न करे। क्षेत्रादि को में जाने की श्रद्धा त्याग दे और जहाँ अपना चित्त स्वच्छ और एकाग्रता युक्त हो होता है वहाँ ही सुख से बैठकर उपासना करे। कंबल, मृदुपास वस्त्र अथवा मृग चर्म पर स्थित होकर एकांत देश में स्थित हो, समान ग्रीवा और शरीर को सरल कर रखे, विधि पूर्वक भस्म धारण कर और संपूर्ण इंद्रियों को रोक कर तथा भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद ज्ञान शास्त्र द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त भक्ति से प्राणायाम करे। जिसका अंतकरण मूढ़ और विवेक शून्य है, उसकी इंद्रिय दुष्ट घोड़ों की समान है, अर्थात जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं आते, वैसे ही दुष्ट इंद्रिय वाले उन्हें वश नहीं कर सकते। और जो ज्ञान संपन्न है, उनके यत्न करने से संपूर्ण इंद्रिय मन के सहित वश में हो जाती है, जिस प्रकार सुशिक्षित अश्व सारथी के वश में हो जाता है। और जो विवेक शून्य चंचल चित्त बाह्य और अंतर शौच से हीन और अनुभव ज्ञान रहित है, वे उस स्थान को नहीं प्राप्त होते, परंतु निरंतर संसार में ही भ्रमण करते हैं। और जो ज्ञानी स्थिर चित्त बाह्य अभ्यंतर पवित्रता से युक्त है, वे उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता। यह श्रुति में लिखा है, जिसका विज्ञान रूपी सारथी मन रूपी लगाम धारण किए है, इंद्रिय रूपी घोड़े जूते शरीर रूपी रथ में जो बैठा है, वह संसार रूपी मार्ग से पार हो परम पद यानी मोक्ष स्थान पर पहुंच जाता है। हृदय कमल कामादि दोष रहित शमदमादि गुण संपन्न स्वच्छ और शोक रहित करके उसमें मेरा ध्यान करना उचित है। जो अचिंत्य स्वरूप सीमा रहित है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, जो नाश रहित कल्याण स्वरूप आदि अंत शून्य प्रशांत और सबका कारण है, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप रूप रहित उत्पत्ति शून्य आश्रय युक्त मुझ ब्रह्म रूप को शुद्ध स्फटिक मणि की समान शरीर और अर्धांग में पार्वती को धारण किए व्याघ्र चर्म ओढ़े नीलकंठ त्रिलोचन जटाजूट धारण किए चंद्रमा शीर पर धरे नागो का यज्ञोपवित पहने व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय ओढ़े सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अभयदाता पीठ की ओर के ऊंचे दोनों हाथों में मृग और परशु धारण किए सब अंग में विभूति लगाए तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस प्रकार से आत्मा की अरणी और प्रणव को उत्तर अरणी करके उसका मथन करता हुआ मेरे मेरा ऊपर कहे अनुसार ध्यान करे तो यह मेरा साक्षात्कार पाता है। जब यज्ञ को करते हैं तब अग्नि के निमित्त खैर व शमी की दो लकड़ी ले ऊपर नीचे रख अग्नि के निमित्त उसे मथते हैं। वेद वचन और शास्त्रों में शास्त्रों के वचन से मुझे कोई नहीं पा सकता, परंतु जो एकाग्र चित्त से सदैव मेरा ध्यान करता है मैं उसे प्राप्त होता हूँ और फिर उसका त्याग नहीं करता। जो पाप से परांगमुख नहीं, जिसकी तृष्णा शांत नहीं है, श्रवण मनन निधि ध्यासन से जिसका मन समाधान नहीं है, जिसका मन चंचल है, ऐसा पुरुष केवल शास्त्र के अध्ययन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का प्रपंच जिस साक्षी रूप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के द्वारा प्रकाशित होता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा यथार्थ ज्ञान से यह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों अवस्थाओं में जो भोग पदार्थ, जो भोक्ता और जो भोग्य वस्तु है, यह तीनों ब्रह्म की ही सत्ता से कल्पित है। इनका प्रकाशक, गति करने वाला सदाशिव मैं ही हूँ। इस प्रकार निर्गुण कथन कर अब फिर मंद अधिकारियों को सगुण रूप का उपदेश करते हैं। माध्यान्न काल के करोड़ों सूर्य की समान तेज युक्त और करोड़ों चंद्रमा की समान शीतल सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसके नेत्र है उनके मुखकमल का स्मरण करें। एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है, सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है, सबका अध्यक्ष और सब भूतों में निवास करने वाला, सबका साक्षी, चित्त की प्रेरणा करने वाला, निर्लेप और निर्गुण है, स्वाधीक सब भूतों का आत्मा, वह एक ही देव है, माया रूप प्रपंच का बीज प्रकट करता है वह पुरुष मैं ही हूँ। मुझको जो धीर पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से साक्षात्कार करते हैं उन्हीं को निरंतर शांति और कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उन काष्ट लोह आदि में सीधे टेढ़े चतुष्कोण आदि रूप से उसी वस्तु के आकारसी हो जाती है, इसी प्रकार सबका अंतरात्मा एक ही है और शरीर में प्राप्त होने से उसी के आकार को प्रतीत उसी आकार जैसा प्रतीत होता है, यद्यपि उपाधि के वशीभूत होने से भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है, तथापि सर्वलोक के दुख से वह दुखी और सुख से सुखी नहीं होता। जो विद्वान ज्ञानी मुझको सर्वांतर्यामी महान व्यापक स्वप्रकाश माया से रहित आत्मस्वरूप जानता है वह संसार बंधन से मुक्त होता है, इसके सिवाय मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा उपाय नहीं है। प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसके निमित्त वेद को उपदेश करना वही स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं हूँ। जो इस निश्चय से मुझे जानता है वे मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त हो जो मुझको तत्व से जानता है वह दुखों से छूटकर अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे शिवराघव संवादे उपासना ज्ञान फलम नाम द्वादशोऽध्यायः।